फिलहाल झलक अनामिका कबीर और अभय के साथ साथ आदित्य ने भी दिल खोलकर जितना हो सकता था अपने लिए शॉपिंग की थी। वहीं अनामिका ने जैसे ये देखा कि आकांक्षा बार बार अपनी शॉपिंग करने के बजाय झलक को ही देख रही है तो उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, वैसे झलक यार मानना पड़ेगा, शादी तुम्हारी बहन की है और शॉपिंग तो हम इस तरह से कर रहे हैं मानो हमारी खुद के घर की शादी हो। ये बोलकर अनामिका जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी। वहीं उसको देखकर आकांक्षा के पूरे बदन में आग लग गई। वो मन ही मन बोली, इस झलक को तो मेरी शादी रोकने की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ पर शादी में आने की तैयारी कर रही है। आखिरकार इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे कुछ ना कुछ पता लगाना होगा। मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होगा। हर हाल में मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी। ये सोचते हुए आकांक्षा का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो रखा था। तभी उसने घबराए अंदाज में जल्दी से सिद्धार्थ के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया और बोली, सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस लड़की को पता चल गया होगा कि आज का हमारा रूटीन क्या है, इसलिए ये हमारा प्लान भी डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ आ गई है। इसके जितनी बदतमीज लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अब जैसे ही आकांक्षा ने ये कहा, सिद्धार्थ केवल हूँ करके रह गया था और बोला था, तुम्हें किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है, जो भी कुछ तुम करना चाहती हो, तुम उसे खरीदो। कहीं ना कहीं ये सुनकर आकांक्षा राहत के साथ मुस्कुरा उठी, क्योंकि कम से कम झलक के वहाँ जाने पर सिद्धार्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ बातें कर रहा था, उससे वो बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं हो पा रही थी। देर ना करते हुए रणविजय भी अनामिका की बातें सुन चुका था और सब कुछ चुपके से ऑब्जर्व कर रहा था। जल्दी ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। देर ना करते हुए वो बोला, शॉपिंग तो तुमने लाखों की कर ली है मिस झलक और सो कॉल्ड मल्होत्रा, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इस शॉपिंग का बिल कैसे भरोगी। आदित्य के पैसे और उसके बलबूते पर तुम इतना ज़्यादा खुद पर खर्च कर रही हो। फटाफट उसने किसी को कॉल किया और जल्दी ही उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। कुछ सिक्योरिटी स्टाफ वहाँ आए और थोड़ा सा झुककर आदित्य को देखकर बोले, सर, आप लोगों की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसमें से लगातार आवाज़ आ रही है, आप लोग एक बार प्लीज़ जाकर चेक कर लेंगे। ये सुनकर झलक के माथे पर बल पड़ गए और अभय बोले, भाई, हम जाकर अभी देखकर आते हैं कि क्या मसला है। आदित्य ने भी हाँ में हामी भर दी थी, लेकिन तभी वो आदमी एक बार फिर से बोला, सॉरी सर, आप दोनों से काम नहीं चलेगा, आप सभी को आना होगा। ये सुनकर तो सभी हैरान पड़ गए कि आखिर ऐसा कौन सा मसला खड़ा हो गया कि उन लोगों को सबको एक साथ जाना पड़ेगा, हम सब क्यों जाएं? तभी झलक ने अनामिका की आंखों की ओर देखना शुरू कर दिया था। अनामिका ने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए हुए थे, लेकिन उनमें हल्का सा छुपाते हुए रणविजय का रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रहा था। तभी झलक समझ गई कि जरूर ये रणविजय की ही कोई ना कोई चाल है। वो मन ही मन सोचने लगी, तो मिस्टर सौतेले खुराना कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं, चलो मैं भी देखती हूँ कि क्या चल रहा है। अनामिका, तुम भी जाओ साथ में, मैं क्या करती हूँ तब तक सारे बैग्स लेकर बिल बनवाकर सारे बैग्स के साथ बाहर आ जाती हूँ, आप लोगों से बाहर मिलती हूँ। जैसे ही झलक ने ये कहा, अनामिका बोली, हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही, ये लोग वैसे भी देख लेंगे क्या मसला है, और वैसे मुझे अभी दो ड्रेस और लेनी है, अभी मेरी शॉपिंग बाकी है। ये बोलकर वो जल्दी से कुछ और ड्रेस लेने की एक्टिंग करते हुए अनामिका मन ही मन बोली, मैं समझ गई, मुझे लग रहा है कि ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई ख़तरा है, इसलिए हम सबको यहाँ से दूर भेज रही हो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर झलक को छोड़कर नहीं जाऊँगी, अनामिका ने मन ही मन ये डिसीजन लेते हुए कहा। फिलहाल देर ना करते हुए अब आदित्य अभय के साथ उनकी बात मानकर पार्किंग एरिया में चला गया था, ये देखने के लिए कि गाड़ी में क्या मसला है। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा का मूड पहले ही सिद्धार्थ की बातें सुनकर काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। वो अपने अकॉर्डिंग ड्रेस डिसाइड कर चुकी थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, सिद्धार्थ, ऑलरेडी मेरी शॉपिंग पूरी हो गई है और शाम की तैयारी भी करनी है, हमें चलना चाहिए। लेकिन अचानक से सिद्धार्थ के मन में न जाने क्या हुआ कि वो हल्का सा रुक गया। उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा था, मानो वो एक नज़र फिर से झलक को देखना चाहता हो। तभी आकांक्षा बोली, क्या बात है सिद्धार्थ जी, आपको कुछ चाहिए क्या, आपको कुछ और खरीदना है? तो सिद्धार्थ ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना, चलो चलते हैं। ये बोलकर वो आकांक्षा को बिलिंग एरिया की ओर लेकर चल दिया था। लेकिन सिद्धार्थ खुराना का अपना रुतबा था तो भला उसे कौन रोक लेता। बड़ी आसानी से झलक, आकांक्षा और सिद्धार्थ वहां से जाने लगे। लेकिन तभी रणविजय ने उन्हें देखा और कहा, वाह मिस झलक, आप यहाँ, तो लगता है कि आप बिल भरने के लिए आने वाली हैं। आपके हाथों में शॉपिंग बैग देखकर साफ लग रहा है कि आपने कम से कम 15 से 20 लाख की शॉपिंग तो कर ही ली होगी। लेकिन एक मामूली से क्लब में काम करने वाली लड़की, चिल्लर कमाने वाली लड़की 15-20 लाख रुपए कहाँ से भरेगी? हाँ, अब जैसे ही रणविजय ने पूरी तरह मजाक उड़ाते हुए ये कहा, वहां मौजूद लोग भी मुंह दबाकर हंसने लगे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिद्धार्थ के चेहरे पर किसी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी उसने आकांक्षा को देखकर कहा, चलो चलते हैं। लेकिन आकांक्षा का इरादा झलक की और ज्यादा बेइज्जती होते हुए देखने का था, क्योंकि आसपास आदित्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और जिस तरह से रणविजय बातें कर रहा था उससे वो समझ चुकी थी कि उसने जरूर कोई प्लान बनाया है। इसलिए आकांक्षा बोली, सिद्धार्थ खुराना, देखिए ना, कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली है, लेकिन शायद इसके पास बिल भरने के पैसे नहीं है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए और झलक की मदद कर देनी चाहिए। सिद्धार्थ इस वक्त आकांक्षा को ऐसे देख रहा था मानो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। वहीं आकांक्षा मन ही मन बोली, मैंने क्या कह दिया, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। लेकिन फिलहाल वो शांत रही। वहीं सिद्धार्थ भी कुछ पल के लिए रुक गया। लेकिन तभी रणविजय बोला, सो कॉल्ड मल्होत्रा, अगर इतना ही घमंड है तो अपने उस नए बॉडीगार्ड को बुला लो जिसे तुमने अपने लिए रखा है, वही आकर तुम्हारा बिल भर देगा। वहीं अनामिका उन लोगों की बेवकूफ़ी पर पूरी तरह से हंस रही थी, लेकिन जानबूझकर चुप थी क्योंकि अभी तक झलक ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तभी कैश काउंटर पर खड़ी लड़की बोली, मैडम, आप कैश से पेमेंट करेंगी या फिर कार्ड से? ये सुनकर रणविजय मजाक उड़ाते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो, ना ये पेमेंट करेगी और ना ही इसके पास पैसे है। आखिरकार आदित्य राणा ही इसकी पेमेंट करेगा, उसने इसे फंसाया ही इसीलिए रखा है, ये बोलकर वो पूरी तरह से हंसने लगा। कैश काउंटर वाली लड़की ने अपनी नज़र सिद्धार्थ की ओर घुमा दी। सिद्धार्थ ने दोनों तरफ अपनी गर्दन हिला दी। इसका मतलब साफ था कि सिद्धार्थ ने उसे बिल लेने से मना कर दिया। ये हरकत आकांक्षा ने भी देख ली और उसके पूरे बदन में आग लग गई। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। इतना ही नहीं, उसके लंबे नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। वही झलक ने अगले ही पल अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए झलक ने रणविजय की ओर देखा और बोली, मिस्टर सौतेली खुराना, नहीं, मिस्टर नाजायज खुराना, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इतनी ज्यादा खुजली किस बात की है। मैं कैश से पेमेंट करूं या कार्ड से पेमेंट करूं, ये मेरा मसला है। ये कहते हुए उसने हर शब्द पर खास जोर दिया। ये सुनकर अनामिका की हंसी छूटने ही वाली थी,
लेकिन रणविजय बोला, अगर तुम अपनी बेइज्जती देखकर भी इतनी दलेर बन रही हो तो बिना आदित्य राणा की हेल्प के पेमेंट करके दिखाओ। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम पेमेंट कैसे करती हो। बिना आदित्य राणा की मदद के तुम कुछ भी नहीं हो। ये कहते हुए उसने अपने हाथों की उंगलियों से जीरो बनाकर कहा, देख रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक जीरो हो, एक खाली जीरो जिसका कोई वजूद नहीं है। ये सुनकर अनामिका अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोरों से खिलखिलाकर हंसने लगी। वो बोली, ओ माय गॉड, एंटरटेनमेंट मिल गया। सच में मैंने नहीं सोचा था कि मुझे आज एक ही दिन में इतना सारा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने आदित्य और बाकी सबको पार्किंग एरिया में उलझा दिया ताकि वो लोग यहाँ का तमाशा ना देख सके कि हम लोग बिल भर पाते हैं या नहीं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत फनी है। अब समझ आया कि उन लोगों को गाड़ी के बहाने पार्किंग एरिया में क्यों भेज दिया गया था। ये सुनकर आकांक्षा का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। उसने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। रणविजय फिर बोला, तुम लोग यहाँ का बिल कैसे भरोगे? और अनामिका, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी क्या औकात थी। तुम्हारे पास होटल में रहने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए तुम्हें खुराना मेंशन में रहने की जगह दी गई थी। लेकिन तुम तो एक नंबर की एहसान फरामोश निकली, और ऊपर से इस झलक के साथ मिलकर तुमने अलग तरह की कहानी बना ली। अब सच में वो लोग झलक और अनामिका की जितनी बेइज्जती कर सकते थे करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं रिसेप्शनिस्ट सारा तमाशा देख रही थी। फिलहाल बिलिंग काउंटर वाली लड़की ने ध्यान से झलक को देखा और कहा, मैडम, आप किस तरह से पेमेंट करना चाहेंगी? अगर कार्ड से करनी है तो प्लीज़ कार्ड दीजिए, आखिर 15 से 20 लाख का कैश कौन अपने साथ लेकर चलता है? ये बोलकर उसने झलक की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखा। झलक मुस्कुराई और बोली, मैं पेमेंट कैश से करना चाहूँगी, किसी कार्ड से नहीं। अब ये सुनकर आकांक्षा सहित सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर अब भी किसी तरह का कोई इमोशन नहीं था। वो सिर्फ यही देखना चाहता था कि आखिर झलक इस सिचुएशन से निकलने के लिए आगे क्या करने वाली है। ये देखना उसके लिए और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला था। फिलहाल देर ना करते हुए झलक ने अपने साथ लाए हुए एक छोटे से बैग को खोला। देखने में वो बैग छोटा था, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह थी। उसने उसमें से पूरे 20 लाख रुपए कैश निकालकर सीधे कैश काउंटर पर रख दिए और बोली, एक काम करो, देख लो इनसे हो जाएगा या फिर और चाहिए। अब तो रणविजय, सिद्धार्थ और आकांक्षा मुंह खोले झलक को ही देखे जा रहे थे। लेकिन झलक इस वक्त पूरी तरह से शांत थी। उसने बिना किसी की परवाह किए आराम से अपना पूरा बिल भर दिया। उसका बिल लगभग 18 लाख रुपए के करीब बैठा था। बिल भरने के बाद उसने बचे हुए पूरे 2 लाख रुपए कैश काउंटर वाली लड़की की ओर बढ़ाते हुए कहा, एक काम करो, ये 2 लाख रुपए तुम अपने पास रख लेना। अब तो ये सुनकर कैश काउंटर वाली लड़की का चेहरा खुशी से खिल उठा। ये रकम उसके पूरे 4 महीने की सैलरी से भी ज्यादा थी। उसे मुश्किल से 40 से 50 हजार रुपए महीना मिलते थे, लेकिन यहां झलक ने उसे सीधे पूरे 2 लाख रुपए दे दिए थे। उसका चेहरा खुशी से पूरी तरह चमक उठा।